आज का विषय है मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। माइंड जो कि एक असीमित सत्ता है, आत्मा या सोल का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें तरह तरह के विचार आते हैं या जिन्हें हम क्रिएट कर पाते हैं। प्रोफेसर स्वामीनाथन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कालीकट यूनिवर्सिटी से बीटेक है और उन्होंने उसके बाद माइंड विषय के ऊपर बीएससी करी और क्राइसिस मैनेजमेंट में एमबीए भी किया। पिछले 21 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के आरईआरएफ राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन विंग के अंतर्गत अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। भाई साहब एक कुशल ट्रेनर और पारंगत मोटिवेशनल गाइड हैं, एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। भाई साहब ने अपने व्याख्यानों में बड़ी कुशलता से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समावेश कर एक निखरा हुआ रूप पेश किया है। इन्होंने जी जागरण, आस्था और संस्कार आदि टीवी चैनल्स पर अनेक टॉक शोज भी दिए हैं। कई बार इन्होंने आईआईटी और आईआईएम के छात्रों को भी संबोधित किया है। इनको रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया है। भाई साहब ने कई स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स और अस्पतालों में अनेक सेमिनार्स और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक सेवाएं प्रदान की हैं। हम मिलिट्री वालों पर इनकी विशेष अनुकंपा रही है कि संपूर्ण देश में घूम घूम कर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपने ज्ञान और अनुभव से सभी का अच्छा मार्गदर्शन किया है। भाई साहब सियाचिन तक भी गए थे। वैसे तो इनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह आपसे आज के विषय पर चर्चा करें।
तो सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्कार और जय हिंद। आप सभी सिक्योरिटी सर्विस विंग के हमारे आदरणीय भाई बहनों का मैं आज के सत्र में बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आप दिल व जान से भारत माँ की रक्षा के लिए तत्पर हैं, इसलिए जब हम आपसे मिलते हैं तो आप पर मुझे बहुत फक्र भी होता है और बहुत गर्व भी होता है। विशेष तौर पर आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है कि हम अपने मन को एक अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं। और मैं आज आपको कोई एडवाइस तो बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और दोस्तों जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है तो क्या करता है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, दिल से दिल का संवाद करता है। तो उसी तरह मैं भी आपके साथ कुछ बहुत प्यार से संवाद करूंगा। शुरू में मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने भाई बहने हैं जो पहली बार यहां पर ज्ञान सरोवर में आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह वाह, अच्छा पहली बार आए हैं, गुड। अच्छा आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप सबका स्वास्थ्य कैसा है? सबका स्वास्थ्य अच्छा है, गुड। तो अगले 2-3 दिनों में हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा में आप हमारे सहभागी बनेंगे और फिर हम बहुत कुछ चीज जानने की जरूर जरूर कोशिश करेंगे। और क्योंकि आज का ये सत्र है तो मैं आपको एक बहुत सुंदर से गिफ्ट भी जरूर दूंगा, क्योंकि जब आप ये 2-3 दिन की यात्रा के बाद जब आप वापस अपने घर में जाएंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर बहुत खुश होंगे, राइट? आप में से कितने हैं जो माता पिता हैं जिनके बच्चे घर में हैं, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा मैक्सिमम, राइट? और जैसे ही आप घर पर पहुंचेंगे तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, पापा आप तो माउंट आबू घूमकर आ गए, हमारे लिए क्या लेकर आए? तो क्या लेकर जाएंगे बच्चों के लिए? प्यार। अच्छा प्यार लेकर जाएंगे, वेरी गुड। तो आपके लिए यहाँ पर एक दिन साइट सीइंग का भी है, तो वहां पर कुछ एक है ना माउंट आबू के मार्केट से आप कुछ परचेज जरूर जरूर करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं ना, तो आपके बच्चों के लिए मैं कुछ एक गिफ्ट आज मैं आपको जरूर जरूर दूंगा। आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप अपने बच्चों के मित्र हैं, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा मित्र हैं, ओके। कैसे पता चलता है कि एक पिता अपने बच्चों का मित्र है? सबने हाथ उठाया। कैसे समझ में आता है कि एक पिता अपने बच्चे का मित्र है, कैसे समझ में आता है? हाँ बहन जी बताइए, बैठकर बता सकते, बैठकर बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब एक दोस्त की अच्छी निशानी है कि वो अपने बच्चों से बातें करते हैं, है ना, अपनी बातों को शेयर करते हैं, करेक्ट। हाँ भाई साहब क्या बता रहे थे? बाप रे, वेरी गुड। मतलब ये बहुत अच्छी पैरामीटर उन्होंने बताई कि जब बच्चे अपनी बात एकदम दिल खोल कर अपने पिता से बता सकते हैं वो दोस्त हैं। तो आप में से कितने लोग दोस्त हैं वो जरा हाथ उठाए। अच्छा वाह, मैं आपके बच्चे से पूछूंगा है? जरूर पूछूंगा जाके। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पापा भी डिफेंस में थे और इसलिए आप लोग के संस्कार देखकर बहुत मुझे अच्छा लगा है कि आपके बच्चे अपने दिल खोल कर अपनी बातें पिता से कह सकते। मेरे पापा एकदम मिलिट्री वाले थे ना, तो अब ऑफिस में कैसा है उनका संस्कार था व्यवहार था वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब वो घर में आते थे तो ऐसे महसूस करते थे कि वो कमांडर हैं और उनके चार बच्चे उनके साथ। जी साहब, जी साहब। और मुझे याद आता है कि मुझे कभी भी अपने पिता से ना डायरेक्टली कभी बात करने का मन ही नहीं किया, बहुत डरता था मैं। मम्मा बहुत प्यारी थी, बहुत मीठी थी, तो हमको कुछ भी बात पिता से बोलना होता था ना मम्मा के आजू बाजू घूमते थे, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके संस्कार बहुत विशेष है, है ना, और आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे पिता मिले हैं, जो बच्चे अपनी दिल की बात अपने पिता से कर पा रहे हैं, ये बहुत वंडरफुल बात है। कुछ एक बातें मैं इसको जरूर जरूर शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग ने हाथ भी नहीं उठाया, ये आपकी सत्यता का प्रमाण है। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा था कि शायद आपके बच्चे अपनी दिल की बात पापा को एक दोस्त के स्वरूप में नहीं बोल पा रहे हैं। तब क्या करना चाहिए? एक बहुत सिंपल सी बात है कि एक दोस्त की बहुत सुंदर निशानी है। जस्ट इमेजिन करिए, अगर दो दोस्त बहुत वर्षों के बाद जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं और फिर क्या करते हैं, है ना, बहुत प्यार से अपनी पूरी कहानियां सुनाते हैं, करेक्ट। अरे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कैसा था, क्या था, बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाते थे। अगर दो सखियां आपस में मिल गए तो पूरी जीवन कहानी सुनाते थे। इसीलिए एक अच्छे दोस्त की निशानी है, अगर आपको अपने बच्चों का अच्छा दोस्त बनना है तो जब वापस जाएंगे ना तो अपने बच्चों के साथ ये तीन दिन में जो हुआ ना उसकी कहानी बहुत प्यार से बैठकर सुनाना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करीब 10 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में और मीडिया में पढ़ा होगा, मुंबई का एक विद्यार्थी, राइट, सारे विश्व को यह बता रहा था कि आत्महत्या कैसे किया जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था और उसका लास्ट सीन यही था, और लाइव स्ट्रीम में सारी दुनिया को बता रहा था कि आत्महत्या कैसे करते हैं, और वो बता रहा था देखो है ना सूर्य अस्त हो रहा है अभी, नेक्स्ट सेकेंड मैं अपने इस होटल रूम के इस खिड़की से मैं छलांग मारूंगा, एंड दैट वॉज द लास्ट मिनट। और उसने एक्चुअली वैसा किया और सारी दुनिया उसको देख रही थी लाइव पर। और जब ये सीन जब मुझे पता चला और जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि ये गलती सिर्फ माता पिता की नहीं है, कभी कभी हम लोग शिक्षक भी ये गलती कर बैठ रहे हैं। और कभी कभी मुझे लगता है एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों का दोस्त नहीं बन पा रहा है। दोस्त की बात है तो मैं एक बहुत प्यार से कहानी सुनाता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप घर वापस आएंगे तो अपने बच्चे को ये दोस्त की कहानी जरूर सुनाना। कौन कौन सुनाएंगे वो जरा हाथ उठाएं। वाह, आज मुझे कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, शाम का वक्त है, राइट। और मैं चाहता हूं ये कहानी बहुत ध्यान से सुनना, और जब आप ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे तो चाहे मां हो चाहे पिता हो, आप अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं, आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी सखी बन रहे हैं। ये कहानी आप लोग की डिफेंस फोर्स के साथ ही जुड़ी हुई है, बचपन की कहानी। दो दोस्त आपस में बहुत वंडरफुल दोस्त, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, धीरे धीरे बड़े हुए और दोनों दोस्त इतने गहरे दोस्त थे, उनको देश के प्रति देश सेवा के प्रति इतना जुनून था और दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेंगे और देश की रक्षा और देश की सुरक्षा करेंगे। दोनों ने अप्लाई किया और दोनों की पोस्टिंग डिफेंस फोर्स में हो गई। दोस्त थे और उनका इतना बड़ा गहरा संबंध था कि सौभाग्यवश वो दोनों एक ही यूनिट में भर्ती हुए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सरहद में युद्ध छिड़ गया और इनकी यूनिट जो थी वो सरहद में पोस्टिंग की गई थी और वहां पर उस तरफ से बहुत गोले बरस रहे थे, इस तरफ से बहुत गोले बरस रहे थे, पूरी तरह से युद्ध चल रहा था। एक दोस्त एक बंकर में, दूसरे दोस्त दूसरे बंकर में था। कुछ समय के बाद एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त की आवाज सुनाई दी, परमजीत प्लीज मुझे आके बचाओ। परमजीत ने जैसे ये आवाज अपने दोस्त की सुनी तो इमीडिएटली उसको महसूस हुआ कि शायद उसका दोस्त खतरे पर है और उसको उसको बचाना चाहिए। तो जैसे ही जाने लगा तो उनके जो दूसरे साथियों ने कहा, नहीं 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 आप जा नहीं सकते हो क्योंकि बहुत फायरिंग चल रही है, अगर आप जाएंगे तो आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। कुछ समय के बाद फिर से परमजीत को एक वाणी सुनाई दी, परमजीत प्लीज आ जाओ। तो उसने फिर कहा कि नहीं, मुझे अपने दोस्त की रक्षा करनी है, बचपन का दोस्त है, बचपन का बड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। फिर उनके साथियों ने कहा, नहीं 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 उसका जीवन खतरे में है, अगर आप जाओगे तो आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ क्षणों के बाद फायरिंग के बाद फिर उनको एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, परमजीत प्लीज आ जाओ। अब उन्होंने साथियों को कहा कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, चाहे मेरा जान चले जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। और वो परमजीत दौड़कर अपने दोस्त के पास जाता है। कुछ समय के बाद जब फायरिंग थम जाता है तो उनके जो साथियां थे वो बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं पत्थर के साइड पर परमजीत अपने दोस्त को लेकर बैठा हुआ है। और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त, परमजीत का दोस्त मर गया था। तो उनके साथियां कहते हैं, अच्छा हो गया आप बच गए, क्योंकि देखो आपका दोस्त मर गया है, और थैंक गॉड यू आर अलाइव, थैंक गॉड आप सुरक्षित हो। तो परमजीत अपने साथियों को देखकर कहता, नहीं मेरा दोस्त मरा नहीं था, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था, राइट। और जैसे ही मैं पहुंचा मेरे दोस्त ने मुझे एक बात कही जो मुझे दिल को छप गई। तो उनके साथियों ने कहा कि आपका दोस्त क्या बोलने के लिए इंतजार कर रहा था। तो परमजीत ने अपने साथियों कहा कि मेरा बचपन का दोस्त, माई चाइल्डहुड बड़ी, मेरे लिए इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरा दोस्त का एक अंतिम वाक्य था, और उनका अंतिम वाक्य था, परमजीत मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। और हमेशा के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी, राइट। सोचने की बात यह है दोस्तों कि अगर एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति इतना विश्वास हो सकता है तो क्या हमारा विश्वास उस खुदा दोस्त पर नहीं हो सकता क्या? ये सोचने की बात है। और अंतिम समय पर अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है वो सिर्फ ईश्वर, वो सिर्फ वो खुदा दोस्त है। मैं आपसे बहुत प्यार से पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चों के दोस्त तो बनना चाहेंगे, और उसके लिए आप ये अच्छी अच्छी कहानियां 3 दिनों में सुनेंगे और अपने बच्चों को जाके जरूर सुनाएंगे। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने मेरे दोस्त हैं जो खुदा के दोस्त हैं, वो जरा हाथ उठाएं। ईश्वर के दोस्त हैं, अच्छा वेरी गुड, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, अच्छा, क्योंकि शायद दोस्त की पूरी पहचान नहीं है। दोस्त वही हो सकता है जिसकी पूरी पहचान है। अगले 3 दिनों में मैं चाहूंगा कि आप उस खुदा दोस्त, उस ईश्वर, उस भगवान, उस परमेश्वर, परमात्मा, वाहे गुरु, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं, उनका सत्य परिचय लेकर यहां से जाना। और वो दोस्त है ना, आपको कुछ एक कहानियां जरूर सुनाएगा। एक अच्छे दोस्त की तरह वो कहानियों को पहले सुनना, विश्वास करना या नहीं करना। जैसे इनॉग्रल सेशन में कमोडर सर ने इतना प्यार से अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत मीठी बात, आपको भी जितनी अच्छी लगी उतना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो परमात्मा जो है ना, वो बहुत सुंदर प्यारी मीठी मीठी कहानियां आपको जरूर जरूर सुनाएगा। और अगर ईश्वर के साथ वो संवाद करना है तो आपको अपने मन को एक दोस्त बनाना बहुत बहुत जरूरत है। अब मैं आपको अपने विषय पर जरूर आता हूं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसे कितने दोस्त यहां बैठे हैं जिन्होंने अपने मन को एक दोस्त बनाया है, वो जरा हाथ उठाएं। अब फिर आपको कंफ्यूजन है, राइट। मन को दोस्त कैसे बनाते हैं और मन क्या है, और खास करकर अगर ईश्वर के साथ संवाद करना है तो पहले अपने मन को एक दोस्त बनाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए ये बहुत बहुत जरूरत है। जैसे दो दोस्त संवाद करते हैं, बातें करते हैं, उसी तरह हमको जो फैकल्टी मिली है जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ बातें करते हैं वो है हमारा अपना मन। मन दोस्त है या दुश्मन है? कभी कभी वही मन दुश्मन भी बन सकता है, वही मन हमारा दोस्त भी बन सकता है। ये आपका चॉइस है कि आपको उसको दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है। कैसे पता चलता है? अगर मैं कहूंगा एक छोटे बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि आपको कहां जाना अच्छा लगता है, बगीचे में जाना अच्छा लगता है या जंगल में जाना अच्छा लगता है, तो बच्चा क्या जवाब देगा? बगीचे में। राइट, बगीचा या जंगल। तो आपने कहा कि आपके बच्चों को बगीचे में जाना बहुत अच्छा लगता है नेचुरली। कभी कभी एक बार ट्रैकिंग के लिए अगर आप जंगल चले गए तो दैट्स ओके, लेकिन बगीचे के सामने आपका एक सुंदर सा घर हो, ये शायद संसार का हर व्यक्ति का एक बहुत प्यारा सपना होता है कि मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर सा बगीचा हो। कोई घर को जंगल में बनाना, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति के बहुत प्रेमी होते हैं। बगीचे और जंगल में क्या अंतर है? मन को बगीचा बनाना है या मन को जंगल बनाना है, ये हमारे हाथ में है। दो तीन अंतर मैं आपको बताता हूं। अगले तीन दिनों में आप अपने मन को बगीचा बनाने की जरूर कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति को बगीचा बहुत पसंद आता है। सबसे पहली बात, बगीचा इसलिए पसंद आता है आपको और बच्चों को क्योंकि बगीचे में क्या होता है, बहुत खुशबूदार फूल होते हैं, रंग बिरंगे तितलियां होती है। जंगल में क्या होता है, बहुत जानवर होते जो हमेशा डराते रहते हैं। उसी तरह हमारा मन बगीचा है या जंगल है कैसे पता चलेगा? अगर हमारे मन में बहुत अच्छे संकल्प चलते हैं, खुशियां आती है, राइट, तो आप अपने मन के बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर हमें बहुत गुस्सा आता है, नफरत आता है, ईर्ष्या आती है, नेचुरली इसका मतलब है कि हमारा मन जंगल है। आप में से ऐसे कितने हमारे दोस्त है जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो खड़े हो जाएं, जरा खड़े हो जाएं, कैमरा वाले भाई जरा फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। हाँ, अरे वाह, ऐसे कितने दोस्त है जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, वाह, फोटो लिया जा रहा है, तालियां बजाइए, वाह। हमारे दो दोस्त है जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वेरी गुड वेरी गुड, बैठिए, बहुत अच्छा। आप लास्ट में अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर भी देना है, हम सबको जरा SMS कर देंगे हैं, और जरूर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ना प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट में भी डाल देंगे। देखो, सिक्योरिटी सर्विस विंग में ऐसे दो महान है ना जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, वेरी गुड। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, भारत रत्न नहीं, एटलीस्ट इनको पद्मश्री पद्मभूषण के लिए तो जरूर सोच सकते हैं। यस, क्योंकि गुस्सा नहीं आता एक बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छा बताइए, कितनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो जरा हाथ उठाए। नहीं, कैमरा नहीं लेना, फिर भी आप हाथ उठा सकते हैं, आप हमारे दोस्त। नहीं नहीं, नहीं, कैमरा रहने दीजिए। वाह, देखो आपकी सत्यता बहुत अच्छी लगी। इतना गुस्सा आता है फिर भी आपके बच्चे आपके दोस्त हैं? अरे वाह, कमाल है आपके बच्चों का। गुस्सा आता है, क्रोध आता है और बच्चे आपके दोस्त, ये कभी नहीं हो सकता है, राइट? बच्चों को वो बहुत अच्छे लगते हैं जिनको कभी गुस्सा नहीं आता है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। आज से 21 वर्ष पहले मैं आपकी तरह वो सीट पर बैठा था और ऐसे ही एक सेशन में मुझे बताया गया कि गुस्सा आ रहा है मतलब आप अपने मन को जंगल बना रहे हो। और उस दिन मैंने महसूस किया, नहीं, मुझे गुस्सा पर विजय जरूर पाना है। और आज जब मैं अपने इंजीनियरिंग क्लासरूम में जाता हूं तो बहुत प्यार से अपने बच्चों को कहता हूं, यू विल नेवर सी स्वामी सर गेटिंग एंग्री विथ यू, आप मुझे कभी गुस्सा होते हुए देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं महसूस करता हूं एक शिक्षक को एक बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहिए। तो अगले तीन दिनों में इस गुस्सा रूपी दुश्मन पर विजय पाना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है दोस्तों, कहते हैं, एन इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। उसका हिंदी अनुवाद यह है कि एक बुद्धिशाली दुश्मन एक बेवकूफ दोस्त से ज्यादा अच्छा है। अब जस्ट इमेजिन करिए, अगर मैंने अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाया, मन को बुद्धिशाली बनाया, मन को शक्तिशाली बनाया, तो आपका जीवन कितना वंडरफुल, स्वर्ग कितना सुंदर बगीचा बन जाएगा। तो सबसे पहला अंतर बगीचे और जंगल में यह है। दूसरी बात यह होती है कि बगीचे को ना मेंटेनेंस किया जाता है, जंगल में कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती दोस्तों, कहीं कुछ भी उग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारा मन को अक्सर इतना गुस्सा आता है क्योंकि हमने अपने मन के लिए कभी टाइम नहीं निकाला है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि अगले तीन दिन में, राइट, ये मन रूपी अस्त्र शस्त्र पर आप जरूर जरूर काम करना। सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र ये हमारा मन। इसलिए मैंने इस विद्यालय से एक बहुत अच्छी बात सीखी, मन जीते जगत जीत और मन के हारे हार। और अगले तीन दिनों में हर फैकल्टी इसको घुमा फिराकर आपको ये बात जरूर जरूर कहेगा। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बगीचे में ना दोस्तों एक माली होता है, मालिक होता है, उसी जंगल का कोई माली नहीं होता है। उसी तरह अगले तीन दिनों में हम अपने मन रूपी बगीचे के माली बने और अपने मन को जरूर जरूर संवारें। कैसे समझ में आएगा कि आप अपने मन पर काम कर रहे हो? बहुत सिंपल है दोस्तों, वो आपका चेहरा। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। तो अगले तीन दिनों के बाद जब आप यहां पर प्रोग्राम खत्म हो जाओगे ना, जैसे ही आप अपने घर में जाएंगे ना, आपका छोटू आपका पापा का चेहरा देखकर कहेगा, पापा आपके चेहरे में इतना परिवर्तन हो गया, फेयर एंड लवली लगाकर आए हो क्या? यस। और अगर आपके बच्चे को आपके पिता के चेहरे में वो अंतर नजर आया और फेयर एंड लवली तीन दिनों में आपका चेहरा कोई गोरा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके चेहरे की वो चमक जरूर बढ़ेगी। और चेहरे की चमक बढ़ती है मुस्कुराहट से। तो तीन दिनों के बाद आप में से कितने हमारे दोस्त है घर जाते ही साथ अपने बच्चे को देखो 32 बिना का स्माइल करेंगे, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, अपने लिए जरा जोर से तालियां बजा लीजिए। वेरी गुड, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। आपने पहला कदम उठाया अर्जुन की सुरक्षा के लिए। और अर्जुन कौन है? वही विद्यार्थी जिसने करीब 10 दिन पहले आत्महत्या किया था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन महाशक्तिशाली था, महायोद्धा था। मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूं, लेकिन मन कमजोर हो गया। मन कमजोर क्यों हुआ अगले तीन दिनों में आप जरूर देखेंगे। लेकिन अर्जुन के मन को शक्तिशाली शायद हम शिक्षकों ने नहीं किया, शायद माता पिता को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आप जैसे ही जाएंगे सबसे पहले अपने घर में अपने बच्चे को देखकर 32 बिना का स्माइल जरूर करना, मुस्कुराना, राइट? ये बहुत बहुत जरूरत है। और बच्चों से मैंने एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र सीखा है। सुबह सुबह का टाइम है ये, राइट? ये हमेशा ये गुरु मंत्र आप बच्चों को जरूर सिखाना। एटलीस्ट आप ये गुरु मंत्र कल सुबह से जरूर स्टार्ट करना। इंग्लिश में गुरु मंत्र है ये, मुझे गुरु मंत्र बहुत अच्छा लगता है, तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सभी बोलिए, इफ आई एम हैप्पी। थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़ा इमोशंस भी आने चाहिए। कुछ लोगों का चेहरा देख के डर लगता है। इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा वाणी में मधुरता भी लाइए, सुनने में थोड़ा आनंद आना चाहिए ना। मेरे पापा जब ऑफिस से घर आते थे तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो सारा मिलिट्री का यूनिट को ट्रांसफर कर लिए। घर अलग है, आपका यूनिट अलग है, दोनों अलग अलग रोल आप प्ले कर रहे हो, ये अंतर समझ में आना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ, थोड़ा मधुरता के साथ आप बहुत प्यार से बोलेंगे, इफ आई एम हैप्पी आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। यस, तो सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, क्या जवाब देंगे? व्हाट इज लाइफ? ये जब MBA के स्टूडेंट्स आते हैं ना हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो कभी कभी इंटरव्यू करने के लिए मुझे हमारे है ना डीन डायरेक्टर बोलते हैं। तो जब ये बच्चे MBA के लिए आते हैं एडमिशन के लिए, तो चार साल में इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा मैं कभी नहीं पूछता हूं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा प्रश्न पूछना अच्छा ये लगता है कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। तो कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, बहुत प्यार से जवाब देते हैं, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ स्टूडेंट जवाब देते हैं, सर लाइफ इज अ चैलेंज, सर जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि बॉम्बे में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना तो उससे बड़ा संघर्ष। एक कैंडिडेट था जो जीवन की परिभाषा के लिए युद्ध कर रहा था। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उसको बहुत प्यार से कहा, दैट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, हम आपसे फिर से मिलना पसंद करेंगे। तो ये लड़का दरवाजे तक जाता है, कुछ क्षणों तक वेट करता है, वापस आता है और मुझे देखकर कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। मैंने कहा, व्हाट सर? प्लीज क्या आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हो क्या? अब कितनों को मोबाइल नंबर देते हैं, वाई टू क्रिएट अ सीन। मैंने कहा, नोट करिए। फटाफट नोट करता है, थैंक यू सर करके निकला। 6-8 मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल में एक बहुत सुंदर मैसेज आया, और जब मैंने पढ़ा तो जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा, तो मैंने अपने पैनलिस्ट के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो एक फैकल्टी ने कहा, सर ये जो लड़का गया ना शायद इसी ने भेजा होगा। मैंने कहा, मैं वेरीफाई करता हूं। मैंने उसी नंबर पर रिंग किया और लड़के ने फोन पिकअप किया। वेरिफिकेशन के बाद मैंने बहुत प्यार से उसको पूछा फोन पर, माय डियर बॉय अचानक जीवन के बारे में कहां से पता चला? और ये लड़का मुझे फोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजिन सर। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे बच्चे जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम माता पिता और हम शिक्षक अपने बच्चों को जीवन क्या है बता नहीं पा रहे। तो मैं आज आपके साथ मेरे विद्यार्थी से जो जीवन की परिभाषा सीखा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और मैं चाहूंगा घर में जाएंगे ना तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करना। कौन कौन शेयर करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। वाह वेरी गुड वेरी गुड। राइट, व्हाट्सएप नहीं करना, उसको बोलना। और अगर आपके बच्चे बहुत दूर रहते हैं ना तो एक अच्छे दोस्त की तरह ना अपने बच्चे को पत्र लिखना, राइट अ लेटर। आप में से ऐसे हमारे कितने दोस्त हैं जिन्होंने अपने माता पिता के द्वारा पत्र पाए हैं वो जरा हाथ उठाए। वाह आप कितने सौभाग्यशाली है सर। राइट, आपने भी लेटर रिसीव किया, वेरी गुड। मेरे पापा के साथ मैं कभी बात नहीं करता था, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था ना तो अपने पिता का लव लेटर का मैं इंतजार करता था। यस पापा वही चीज बोलते थे, बच्चे अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना, संघ का रंग लग जाएगा, अपने दोस्तों का थोड़ा ध्यान रखना। यस लेकिन वो लव लेटर जो था ना मुझे इतना शक्तिशाली बनाता था। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो अपने माता पिता के वो लेटर को आपने रिसीव किया। हमारे बच्चे इतने सौभाग्यशाली नहीं है। राइट, हमारे बच्चों को आजकल हम लोग व्हाट्सएप में भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं अपने बच्चे को लेटर लिखने के लिए। कभी कभी लगता है कि अर्जुन को अगर अपने पिता का एक लव लेटर होता था ना तो शायद उसको इतनी शक्ति मिल जाती थी कि वो आत्महत्या नहीं करता था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को आप कुछ बोल रहे हैं और वो नहीं सुन रहे ना तो एक बहुत सिंपल विधि को अपनाना, घर जाकर ना जो भी आपकी दिल की बात है ना उसे एक बहुत प्यार से एक लेटर लिखना और उसके नाम पर पोस्ट करना। और भले वो आपके घर पर रहता ना, वो थ्रू पोस्ट ऑफिस होते हुए उसके नाम पर वो लेटर आना चाहिए। वो जिंदगी भर उस लव लेटर को ना अपनी किताब में रखेगा। कुछ समय के बाद इंजीनियरिंग पढ़ेगा, मेडिसिन पढ़ेगा, जब निराश हो जाएगा ना और जब इधर उधर का संकल्प चलेगा ना, वो धीरे से अपने पापा का लव लेटर को पढ़ेगा और वो उसको इतनी शक्ति देगा कि वो कभी भी आत्महत्या के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है। मैंने अपने विद्यार्थी के साथ जो समझा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उस लड़के ने लिखा था जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, तो लिखते हैं देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। कहते एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है, कितनी बार? और आप सभी बच्चों के माता पिता सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? कितनी बार? 3 बार। भावा आपको तो हमारे मुंबई के बच्चों के सेम संस्कार। मैंने अपने बच्चों को पूछा कितनी बार मुस्कुराते हो, वो आपकी तरह खड़े होकर कहता सर 3 times सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था तो मैंने उसको देखकर कहा, मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाते हो? बोला नहीं सर। फिर मैंने कहा ऐसे क्यों जवाब दिया? तो उसने इतना ब्यूटीफुल इस प्रश्न का जवाब दिया, बोला फ्रेंकली स्पीकिंग सर हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। एंड बिफोर आई कुड कॉम्प्लीमेंट हिम उसने लॉजिक दिया, सर रिसेंट जम्मू कश्मीर फ्लड सर, आपने वो ब्रेकिंग न्यूज वीडियोस में देखा होगा, एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर्स ड्रॉपिंग दोस फूड पैकेट सर, नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना वो कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे। 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला सर उनको, उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। और फिर उन्होंने अपना लॉजिक को कंक्लूड किया, सर शुड आई वेट फॉर एन इम्पेंडिंग डिजास्टर, क्या मैं किसी आपदा का इंतजार करूं इस बात को महसूस करने के लिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और जैसे ही मैंने इस बच्चे का लॉजिक सुना ना, मैंने कहा आपको देखकर ऐसा लगता है कि हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है, कितना सुंदर लॉजिक दिया। फिर मैंने कहा अच्छा बच्चे बताओ, बचपन में हम 300 बार मुस्कुराते हैं, बड़े होने तक गाड़ी 3 बार अटक क्यों जाती है? तो उसने बहुत सोचकर कहा सर लॉट्स ऑफ तनाव सर। मैंने कहा हां ये बात राइट है। अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के तनाव के ग्राफ को ड्रॉ करूं, आपकी बात कर रहा हूं और विशेष मां की बात कर रहा हूं, तो जनवरी फरवरी में माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में विशेष मां का तनाव तो एकदम आसमान पर, फिर धीरे 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 मां का तनाव कम होता है। आप बताइए दोस्तों मार्च अप्रैल में मां को किस बात का इतना तनाव होता है? थोड़ा जोर से बोलिए। वाह राइट, बच्चों के एग्जाम। और मैं देखता हूं जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है ना उस दिन मां का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है, उस दिन वो ज्यादा डांटती वाटती नहीं है, बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। बेटा कहता नो मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, नो ये एग्जाम है 10 o'clock, मम्मा आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, मुझे भूख नहीं लगी, नो ये एग्जाम है 10 o'clock, मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है। और बेटा कहता मम्मा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, अब क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, इसमें हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर दिमाग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। दिमाग को ब्रेन कहते, हाँ, माइंड इज द सॉफ्टवेयर, मन सॉफ्टवेयर। और आपको पता है दोस्तों, जब वायरस सॉफ्टवेयर में आता है ना, तो उसका इफेक्ट हार्डवेयर में होता है। मन का ध्यान रखना जरूरत है, इसलिए कहते हैं माइंड योर माइंड, बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। मन का ध्यान रखो। और मन क्या है? क्वालिटी ऑफ माइंड, बेसिकली इट्स अ टीम। टी इज थॉट्स, ई इज इमोशंस, ए इज एटीट्यूड एंड एम इज मेमोरी। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। जैसे आप किसी ऑपरेशन में जाते हो ना, तो आपकी एक टीम होती है एंड यू कॉल इट एज बडीज। और टीम के बीच में ना बहुत परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसलिए जब कुछ समय पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, इट वॉज परफेक्ट प्लानिंग, और उनका हर टीम मेंबर ने बहुत क्लियरली अपना रोल निभाया। जितने भी लोग उस सर्जिकल ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उनको अपना रोल इतना क्लियर था और उन्होंने उसका प्रैक्टिस कितनी बार अपने मन में किया होगा। उनको क्लियर कट मालूम थी कि उनको क्या करना है, किस समय उतरना है, क्या करना है, वापस कितने समय आना है, द ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो जैसे किसी भी ऑपरेशन में टीम के साथ काम करना जरूरी है, उसी तरह हमारा आंतरिक टीम भी काम करना जरूरी है। और जब हम मन की बात कर रहे हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। जिस तरह शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए आप व्यायाम करते हो, उसी तरह मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन का भी व्यायाम करना जरूरत है। तो आज हम थोड़ा सा एक मन का व्यायाम करेंगे, ठीक है? तो क्या व्यायाम करेंगे? मैं आपको 7 वस्तुओं का नाम बताऊंगा और मैं चाहूंगा उसको आपको याद करना है, ठीक है? हाँ, सभी सीधे बैठे। यस, तो ये मन का व्यायाम है, ठीक है? और इसको आपको बहुत बहुत खुशी से करना है। 7 वस्तु बताऊंगा और इसको आपको याद करना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी स्टार्ट। लिखना नहीं है, लेकिन उसको मन का एक्सरसाइज करना है। और ये मन का एक्सरसाइज घर में जाकर आप अपने बच्चे को जरूर जरूर सिखाना, ठीक है? नंबर 1, जामुन। गुलाब जामुन नहीं, जामुन बोलते थे सारे लोग, गुलाब जामुन पे टूट पड़ते, वो फ्रूट होता है, फ्रूट। नंबर 2, पतंग। नंबर 3, आसमान। नंबर 4, पंछियां। नंबर 5, बगीचा। नंबर 6, एक छोटा सा बच्चा। नंबर 7, तिलक। ठीक है, अब तिलक। अब 7 में से मैं, अच्छा यहां पे सबसे छोटे बच्चे भी कुछ आए हैं, कुछ जरा बच्चे, छोटू आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ छोटू। अच्छा वो नहीं आ रहा है कोई, छोटू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चे। वाओ, अरे वाह, अर्जुन के साथ अभिमन्यु भी पहुंच गया है ना, ये हमारा अभिमन्यु है, राइट? आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो, एक ठीक है, एक ठीक है, दूसरा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। वाह, क्या नाम है?
राजू।
क्या नाम है?
राजू।
ओके ओके, वेरी गुड। कहाँ से है?
दिल्ली
से आया। वाओ, है ना? अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, हम बैठ जाओ। हाँ ठीक है, अब एक काम करना राजू, आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है और ये 7 वस्तु मैं उसको उनसे पूछूंगा जिनका चेहरा एकदम सीरियस है, जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, उनको छोड़ दूंगा। अब ये मेरे बहुत पुराने संस्कार है, मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ, तो मेरे आजकल इंजीनियरिंग बच्चे बहुत बुद्धिशाली हो गए। सर, हैप्पी सर, स्माइलिंग सर, चीयरफुल सर। तो आप एक काम करना राजू, जाना और कोई भी एक अंकल आंटी को पकड़ के लेके आना जिसका चेहरा बहुत सीरियस है, जिनका चेहरा मुस्कुराता है, उनको छोड़ देना। जाओ 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 जाओ, है ना? जाओ जाओ जाओ। अब भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अभी हमारा अभिमन्यु जा रहा है। हाँ, जिसका चेहरा बहुत सीरियस, हाँ ढूंढो 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 ढूंढो, है ना? कोई एक अंकल आंटी को तो पकड़ के ले आना है। हाँ, या या या, राइट राइट राइट। वाह, देखो हमारे डिफेंस वाले सारे बुद्धिशाली हैं, सारे मुस्कुरा रहे हैं। राइट राइट, राजू इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ, वहां सारे मुस्कुराते, इधर थोड़ा देख, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ, यहाँ पर लोग कुछ हैं, थोड़ा देखो। जैसे वो यूनिट में जाते हैं ना, तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो घर में भी वही चेहरा लेकर जाते हैं और सारा गड़बड़ हो जाता है। जरा देखो सबका चेहरा, इंस्पेक्शन करो। हाँ हाँ हाँ, वो बहन जी देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं, इनसे तो कभी पूछ ही नहीं सकते। हाँ जाइए जाइए जाइए। हाँ हाँ, राजू नहीं नहीं नहीं, उनका चेहरा, हाँ देखो भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, बच गए नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, उनका मुस्कुराहट ऐसी है। राइट राइट राइट। हाँ राजू, आजा आजा आजा, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए। राज्यों के लिए जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड, बैठ जाओ। राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका सबका चेहरा थोड़ा मुस्कुराहट तो हुई। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्माइल। एक बार मैं कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था, तो वो छोटू जाकर उसको खींच रहा था, अंकल आ जाओ, और वो एकदम कड़क की तरह। तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ा मुस्कुराइए ना, वो ऐसी घूर के देख रहे। मैंने कहा भाई जी थोड़ा मुस्कुराइए। फिर उसने कहा नहीं, मैं अंदर से बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे चेहरे में खुशी नहीं आती, क्योंकि ये बचपन का है ना डिफेक्टिव सिस्टम हो गया, बचपन का डिफेक्शन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, कभी कभी वो कहते चेहरे ही मेरा ऐसा है तो मैं क्या करूं। लेकिन चेहरे को आप थोड़ा सा एटलीस्ट जब घर में जा रहे ना तो परिवर्तन जरूर करना। अच्छा, क्योंकि आप सभी का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, इसे मैं किसी से नहीं पूछूंगा। स्वामी भाई थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छे दोस्त निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देने का, बच्चों को टेक्नोलॉजी देने का। क्या देने का? टेक्नोलॉजी। आज है छोटू, यस, अपना सिंहासन को लेकर आ। सिंहासन मतलब चेयर। आजा आजा, यस। तो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको बताते हैं, ठीक है? और ये एक्सरसाइज आपको घर में जाकर अपने बच्चों को गिफ्ट देना है, खास करके। राइट, उन बच्चों को गिफ्ट देने से उनका जो मन का जो टेंशन है ना पढ़ाई को लेकर, और उनकी मां की बहुत दुआएं भी आपको मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज मुझे बहुत करना बहुत अच्छा लगता है, और इस एक्सरसाइज के द्वारा मैं कुछ एक बातें बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाता हूं। आपका नाम क्या है?
कार्तिक।
कार्तिक कहां से आया है?
बैंगलोर
से। वाओ, कार्तिक बैंगलोर में मिले थे हमें। राइट, ओके। तो कार्तिक कौन से क्लास में पढ़ता है?
सिक्स
में पढ़ता है, ठीक है। तो कार्तिक मदद करेगा। कार्तिक तू छोटा है ना, तो ये बड़े सिंहासन में बैठ जा, इधर आ जा, और वो वाला सिंहासन इधर दे दे। थैंक यू कार्तिक, सो स्वीट। तो कार्तिक हमें मदद करेंगे एक छोटा सा मन का एक्सरसाइज। कल भी मेरा आपके साथ सेशन है, तो इसका पूरा कंप्लीशन मैं कल भी जरूर जरूर करूंगा, ठीक है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, आपको क्या करना है एक्सरसाइज। आप सभी यहां जो बैठे हैं ना, हम यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो में। आप सभी अपने अपने मोबाइल के लास्ट दो अंक बताएंगे, क्योंकि मन में क्या है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। और आपके बच्चों को और बच्चों की मां को इस बात का तनाव होता है कि आपके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना कहीं वो इसको याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, और इससे हम अपने मन को कैसे दोस्त बना सकते हैं आगे आप जरूर जरूर सीखते जाएंगे, ठीक है? ओके, मुझे 10 सेकंड का टाइम देना। इस 10 सेकंड में आप स्वामी भाई को देखना, हार्डवेयर वेरी स्टेबल, सॉफ्टवेयर मन में मैं कुछ तो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ये मैं आपको कल सीक्रेट पे जरूर बताऊंगा, इसका रहस्य बताऊंगा। लेकिन इस 10 सेकंड में आप सभी भी हमारे दोस्त बैठे ना, वो भी आप मदद मुझे करेंगे। क्या करना, सबसे पहले तो आराम से बैठिए, रिलैक्स, और अगले 10 सेकंड में आप बिल्कुल हिलना मत। सबसे पहले अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल करना। मैं कुछ समय पहले बैंगलोर में गया था एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में, और वहां हमारे बहुत अच्छे दोस्त मिले, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन सचान जी, शायद कल परसों आपसे भी जरूर मिलेंगे। तो मैंने ग्रुप कैप्टन सचान जी से पूछा कि ये जो एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स होते हैं वो कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया 50,000 फुट पर। मैंने कहा गुड। मैंने कहा ये जो कमर्शियल फ्लाइट होते हैं वो कितने पर उड़ते हैं, बोला 30-35 पर। मैंने कहा वेरी गुड। फिर दूसरा प्रश्न मैंने ग्रुप कैप्टन जी से पूछा कि वो कितनी उसकी वेलोसिटी होती है, कितने वो तीव्रता से उड़ता है। तो उन्होंने मुझे कहा Mach 1.5। मैंने कहा Mach 1.5 को आप किलोमीटर प्रति घंटा बताइए ताकि मुझे समझ में आए। बोला Mach 1 इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर पर आवर, तो Mach 1.5 इज 1800 किलोमीटर पर आवर। अब जस्ट इमेजिन करिए, एक पायलट 50,000 के फुट पर वो फाइटर जेट को 1800 किलोमीटर प्रति घंटे पर उसको कंट्रोल करता है। सोचने की बात है, क्या हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? हमारे अंदर, आपके अंदर इतनी असीम शक्ति है दोस्तों, लेकिन वो पायलट वो इसलिए उसको कंट्रोल कर पाता है क्योंकि उसकी वो ट्रेनिंग दी गई है, उसको प्रैक्टिस किया गया। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो मशीन को जिस वेलोसिटी पर लेकर जाना चाहिए, जहां लेकर जाना चाहिए वो लेकर जा सकता है, वो उसकी ट्रेनिंग दी गई है। इंडियन एयरफोर्स ने उनको ट्रेनिंग दी है। उसी तरह अगर हम अपने मन को ट्रेनिंग दें तो जहां चाहिए हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते, 100% कर सकते, और यही अगले 3-4 दिनों में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चलो मन को तो कंट्रोल हम जरूर करेंगे, पहले हम इस शरीर को कंट्रोल करते। तो 10 सेकंड मैं स्टार्ट कहूंगा और मैं ओके कहूंगा, 10 सेकंड, और इस 10 सेकंड पर आप अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। कार्तिक आप भी सामने देखना, आप भी हिलना नहीं, ठीक है? और आप बच्चे तो बहुत प्यारे बच्चे हो, राइट? बिल्कुल हिलेंगे नहीं। सो ऑल दी बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स, हियर वी स्टार्ट। ओके ओके, बहुत बहुत मुबारक हो कार्तिक, आपको भी मुबारक हो, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है। वेरी गुड वेरी गुड, पूरा कंट्रोल किया उसने अपने शरीर को, हिले नहीं वो, क्यों नहीं कर सकते, हम जरूर कर सकते। अच्छा ये 10 सेकंड में आपको क्या करना है, कल सुबह से आप यहां पर आएंगे ना, और सुबह का सत्र मेडिटेशन सत्र आप मिस मत करना, और फिर धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना होता है, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं सर, हम आपसे स्टार्ट करेंगे, आप अपने बैठ कर बोल सकते हैं, मोबाइल का लास्ट 2 अंक बताएंगे, कार्तिक उसको लिखेगा, बोलिए। ओके, ए इज 86, अपने हाँ आराम से, हाँ 86 लिखो, हाँ थोड़ा प्यार से करो ना, है ना, ये मेरा अस्त्र शस्त्र है ना लैपटॉप, हाँ थोड़ा प्यार से करो ना, उसका ध्यान रखना ना, हाँ ठक ठक नहीं करो, हाँ ए इज 86, आई विल से यस देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर बी। ओके बी इज 85, वेरी गुड, आपके संस्कार सुधर रहे हैं, अब ये कर्सर को नीचे करेंगे ना तो नीचे हो जाएगा। ओके बी इज 85, सी इज 84, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक मिनट, हाँ 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 84, डबल सिक्स, कोई बात नहीं, डबल सिक्स, वेरी गुड सर, हमें जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते सर, और आपके तो जुड़वे बच्चे, और मैं आपको कारण बताऊंगा कि हमें जुड़वे बच्चे क्यों अच्छे लगते। सी इज 66, डी, ओके डी इज 91, डी इज 91, ई सर, ओके ई इज 15, ओके एफ मैडम, ओके एफ इज 18, एफ इज 18, छोटू बता तेरा मोबाइल नहीं है बाबा, आपको रात को कितनी अच्छी नींद आती होगी ना, वेरी गुड। अपने पापा दोस्त का जरा नंबर बताओ, लास्ट 2 डिजिट नंबर पापा का, 98 लिखो भाई, उनके पापा का नंबर ले लेते हैं, जी इज 98, ओके सर आप बताइए, आप बताओ भाई जी, 14, एच इज 14, ओके H is 14. I, sir? I is 38. Okay, madam, J? J is 51. J is 51. Okay, I'll help you, Karthik.
Yes.
Okay. Benji, bataye, K? 0? 04. K is 04. ओके एल 64, एल इज 64, एम एम इज 02, एम इज 02, एन एन इज 21, एन इज 21, ओ सर ओ इज 67, सॉरी ओके ओके वी टेक इट अप, ओ इज 37, पी बेंजी खड़े हो जाइए, आप एक मिनट खड़े हो जाइए, अब जो डायलॉग बोलूंगा ना तो आप मेरे पीछे पीछे बोलना, बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलिए आई, नहीं नहीं अपने आपको डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोलिए ना, अपने आप से बात कर रहे हैं, थोड़ा प्यार से बोलिए, आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली, बोलिए बेंजी आप सौभाग्यशाली क्यों हैं, अभी आपने बोला ना आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली, सुना सबने? बोला बहन जी ने, बोला ना आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली, आपने बोला, बताए आप सौभाग्यशाली क्यों है बहन जी? अरे वाह, परमात्मा के घर में डेडिकेटेड है, जरा जोर से इनके सौभाग्य के लिए तालियां बजाइए। बैठ जाइए बहन जी, बैठे बैठे। नहीं, इतने सारे में से आप सिर्फ सौभाग्यशाली हमें क्यों नजर आए, मैं कारण बताता हूं। वैसे आप परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो, उनके घर पर हो, डेडिकेटेड वो तो ही, लेकिन इतने सारे में से आप इसलिए सौभाग्यशाली नजर आए मुझे क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम केरला एंड केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। होता क्या बहन जी, केरला में ना एक लॉटरी चलती है, उस लॉटरी का नाम है सौभाग्यशाली लॉटरी। और क्या करते हैं लोग, वो लॉटरी टिकट खरीदते हैं, उनका नंबर लग जाता है, उनको पता ही नहीं लग चलता उनका नंबर लग गया है। आपकी लॉटरी टिकट का नंबर क्या है? नहीं, वो तो मोबाइल नंबर है ना। हाँ हाँ वो तो मोबाइल नंबर है। हाँ, तो आपका नंबर 04 पहले से आ गया है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। समझ में, आपका नंबर पहले से लग गया है, आप देख लीजिए, इट्स ऑलरेडी देयर। नहीं कार्तिक, रहने दो, बहन जी का नंबर पहले से लग गया है ना, पहले से उनका लॉटरी टिकट लग गया। अब नेक्स्ट, योर नंबर इज ऑलरेडी देयर, 50 वी टेक इट अप, पी इज 50, ओके, क्यू नहीं क्या 82, ओके, क्यू इज 82, ओके, क्यू इज 82, ओके, आर इज 83, आर इज 83, ओके, एस इज 41, टी इज 54। हम लोग यहां स्टॉप कर देते हैं क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, क्योंकि इतना ये आगे चलता रहेगा तो 20 पर हम लोग स्टॉप करते हैं। अब एक काम करते हैं, राइट, कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं ना तो कंप्यूटर उसको सेव करता है। कार्तिक मां, सेव नहीं करना ना, मैं कल परसों ये प्रोग्राम में फिर से हम यूज करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, 10 सेकंड का टाइम दीजिए, ये जो 20 नंबर आपने बताया ना इसको मैं जरा सेव करता हूं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ 10 सेकंड्स। ओके, के क्या था देख के बता, 04, एल एल इज 64। बच्चे जो पढ़ाई करते ना, एक बार हमें एक अच्छे दोस्त की तरह उनको बताना पड़ेगा, अगर कुछ याद नहीं होता है ना तो एक बार उसको रिवीजन जरूर करो, और खास करके मम्मा को जाकर ये बताना कि इसका रिवीजन कैसे किया जाता है, तो ये रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरत है। एम 02, हाँ, तो देख के बता ना, एन यस, ओ पी क्यू आर आर इज 83, एस टी 54, गुड। एक बार रिवीजन करना जरूरी है। हाँ, हम कार्तिक के लिए जोर से तालियां बजा लें, उन्होंने तालियां क्यों बजाई, एक बार जोर से इसके लिए तालियां बजा लो, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? हाँ, आप यहां पर आए, नंबर्स बोले, नंबर्स टाइप किया, मदद की, सर्विस की, इसलिए तो तालियां बजाई। लेकिन कार्तिक, मैंने सभी बड़ों से इसलिए तालियां बजवाई, आपने मदद किया, आपने सर्विस की, वो तो ठीक था, इसलिए बच्चे तालियां बजाई क्योंकि आपका हैंडराइटिंग कितना सुंदर है। कैन वी क्लैप फॉर हिज हैंडराइटिंग, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड हैंडराइटिंग, यस, हम बड़ों, जाइए जाइए, बहुत अच्छा। हम बड़ों को एक चीज जरूर सीखना चाहिए, और क्या सीखना चाहिए, लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिशिएटिंग योर चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करना हमें सीखना चाहिए। आज कार्तिक को ना पूरा रात नींद नहीं आएगा, वाह पब्लिक में सबने उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए तालियां बजाई। एक काम करना, आप हाथ उठाना और कोई सा भी अल्फाबेट पूछना, मैं उसका करेस्पॉन्डिंग नंबर जो है मैं बताने की मैं कोशिश करूंगा, राइट? हाथ उठाना और कोई सा भी अल्फाबेट पूछना, मैं उस करेस्पॉन्डिंग नंबर को बताने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, टू एर इज ह्यूमन, आगे क्या है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो तो आपका मन दिव्य बन जाता है। हाथ उठाना, कोई सा भी अल्फाबेट पूछना, मैं उसका करेस्पॉन्डिंग नंबर बताने की मैं कोशिश करता हूं। अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है, माफ करना है। इससे फायदा क्या होगा, आपका मन दिव्य बन जाएगा। हाथ उठाना और कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करेस्पॉन्डिंग नंबर में बताने की मैं कोशिश जरूर करता हूं। हाँ, पीछे से हम लोग लेते हैं, पूछिए पूछिए भाई जी, पूछिए, कौन सा है? जी इज 98, पूछते जाओ, कोई सा भी अल्फाबेट पूछना मैं उसका करेस्पॉन्डिंग नंबर बताता जाऊंगा. बोलिए. ओके जे इज 51. हाँ जी कौन सा बी बी नहीं वी तो आउट ऑफ सिलेबस है ना. वी तो बी बी इज 85. अच्छा पी पी इज 50. हाँ पूछते जाइए. कौन सा एन इज 21. ओके जी तो अभी बताया 98. ओके एस इज 41. ओके एम इज 02. अच्छा एक काम करिए आप नंबर पूछिए मैं उसका अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं. गलती करूंगा तो क्या करना है. इससे फायदा क्या होगा आपका मन दिव्य बन जाएगा. अभी आप नंबर पूछे मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूं. ओके 82. 82 इज क्यू. 50 इज पी. 04 यस 04 था. इट इज के. 66 इज सी. जुड़वे बच्चे. हमें बहुत अच्छे लगते जुड़वे बच्चे. सर मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे जुड़वे बच्चे लगते. अच्छा एक काम करना कोई से भी नंबर पूछना उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूं. गलती करूंगा तो क्या करना है. फायदा क्या होगा आपका मन दिव्य बन जाएगा. आप कोई सा भी नंबर पूछे आगे पीछे मैं ट्राई करता हूं. कौन सा 14. अच्छा 14 वॉज देर. 14 के जो पहले है. ओके 14 के पहले इट इज 98 करेक्ट. और 14 के बाद इट इज 38. तालियां बजा लीजिए. अच्छा एक काम करिए फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए. आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइट वर्ड्स. फर्स्ट कॉलम में आप अल्फाबेट पूछिए. फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट एच. एच के आगे इट इज 14 राइट. और उसके आगे इट इज आर. उसके आगे इट इज 83. तालियां बजा लीजिए. अच्छा एक काम करिए आप फोर्थ कॉलम में आप नंबर पूछिए. आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वर्ड. फोर्थ कॉलम में आप नंबर पूछिए. 47. किसने पूछा 47? आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं. 47 किधर था. आप टीचर हो क्या डिफेंस फोर्सेस में पढ़ाते होंगे हैं. पिछले जन्म में सर आप टीचर रहे होंगे. इसे अभी तक संस्कार परिवर्तन नहीं हुए आपके. विद इन सिलेबस हमारे बच्चों को और उनकी माँ को इतना तनाव होता है. आप पिछले जन्मों के संस्कार को थोड़ा परिवर्तन करिए सर. हमारे बच्चों को इतना तनाव मत दीजिए. हाँ विद इन सिलेबस पूछिए. 64 वॉज देर. 64 के पहले इट इज एल. उसके पहले इट इज 85. उसके पहले इट इज बी. तालियां बजा लीजिए. अच्छा बताइए मैं ए से टी बोलूं या रिवर्स टी से ए बोलूं. ए से टी बोलूं या रिवर्स टी से ए बोलूं. वाह हमारे बच्चों के सेम संस्कार. मुंबई के बच्चे भी हमें रिवर्स रिवर्स करते रहते हैं. अभी मुझे समझ में आया कि बच्चों को संस्कार मिलते कहां से. राइट वेरी गुड. तब ये काम करता हूं मैं रिवर्स करता हूं. अब जो लास्ट जो टी जो 54 था ना मैं 54 नहीं बोलूंगा. उसको मैं रिवर्स करूंगा. ठीक है. और मैं 54 को मैं 45 बोलूंगा. अगर वो करेक्ट होगा तो आप सभी लोग जोर से यस कहना. सो आई गो फ्रॉम टी टू ए. इट इज 45. देन इट इज 14. देन इट इज 38. देन इट इज 28. देन इट इज 05. देन इज 73. देन इज 12. देन इट इज 20. देन इज 46. देन इज 40. देन इज 15. देन इट इज 8. हाँ इट इज 83. देन इज 41. देन इट इज 89. जोर से बोलिए यस. देन इट इज 81. देन इट इज ओके. देन इट इज ई चाहिए था. इट इज 51. देन इट इज 19. सर इसलिए हमें जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते सर. आगे पीछे याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है. देन इट इज 66. देन इज 58. देन इट इज 68. जोर से तालियां बजाइए. अच्छा बताइए आप में से कितनों को लगता है कि एक टेक्निक आपको घर जाकर बच्चों को गिफ्ट के रूप में देने की इच्छा है वो जरा हाथ उठाए. वाह वेरी गुड वेरी गुड. और अगर ये गिफ्ट बच्चों को देंगे ना तो उसकी मम्मा का चेहरा एकदम रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा. यस yes, क्योंकि मम्मा को इस बात का बहुत ज्यादा तना. आप तो सुबह से शाम तक अपने यूनिट में बिजी रहते हैं. अच्छा मैं आपको ये जरूर जरूर आज और कल में ये टेक्निक जरूर जरूर मैं पूरा करूंगा. लेकिन हाँ मैं जरूर बताऊंगा सर. है जरूर जरूर ये टेक्निक मैं आपको आई विल टेल यू व्हाट इज दिस टेक्निक. लेकिन ये टेक्निक कैसे कैसे हम करते हैं. एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है. कहते हैं स्वामी विवेकानंद हैड ए टेरिफिक फोटोजेनिक मेमोरी. और स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिस करते थे एक बहुत सुंदर विधि को. और वो विधि है राजयोग. यस मैंने 20 नंबर याद किया क्योंकि मेरे पास भी ये टेक्निक है राजयोग. तो कल सुबह से आपका ये सत्र स्टार्ट होगा राजयोग का सत्र. राइट सुबह कितने बजे होगा, कितने बजे का सेशन है बेंजी? 7 o'clock. 7 o'clock का सत्र होगा आपका राज्यों का. उसके पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, वो आपको जरूर बताएंगे. हाँ, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन 4 बजे है, तो अगर आप 4 बजे यहीं पर होगा तो यहां पर आना चाहें तो आप जरूर आ सकते हैं. 4:15, सॉरी, दैट इज देयर इन योर ब्रोशर, सो वी विल गो एज पर द ब्रोशर. लेकिन कल सुबह जो 7 बजे का सत्र होगा, हम लोग राजयोग से स्टार्ट करेंगे. लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा इनपुट मैं जरूर देना चाहूंगा. ये 2 शब्द से बना है, राज और योग. राज मीन्स रहस्य, राज का मतलब होता है राजा. मैं बस एक रहस्य को आपको देखकर मैं बता देता हूं, और इसका जवाब आप कल जब मैं मिलूंगा आपके साथ सत्र में, राइट, आप इसका रहस्य ढूंढ के रखना. कल तक थोड़ा सा इसको खोज करना. कौन सा रहस्य है मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं. ये क्या है? मोबाइल. ये मोबाइल की जो सारी मेमोरी है ना, एक कार्ड में स्टोर की गई है. कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. दोस्तों, अगर मैंने कार्ड से, इस मोबाइल से वो कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा. एक काम करता हूं, अपने मोबाइल से वो कार्ड निकालकर मैं आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज. आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हैं, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हैं. मुंबई से कोई विद्यार्थी अगर मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर. हमको पता है मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर, कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर. अब बताइए दोस्तों, ये जो 20 नंबर आपने बताया, मैंने कहां स्टोर किया है? ए इज 86, बी इज 85, सी इज 66, डी इज 91, ई इज 15, एफ इज 18, जी इज 98, एच इज 14, आई इज 38, जे इज 51, के इज 04, एल इज 64, एम इज 02, एन इज 21, ओ इज 37. तालियां तो बजाइए. ये 3 दिन में ना अपना थोड़ा संस्कार परिवर्तन करके जाइए, थोड़ा तो अप्रिशिएट करना सीखिए. मैं तो सोचा अभी तालियां बजाएंगे, अभी तालियां बजाएंगे, सारे लोग मुझे घूर के देख रहे थे, बोलते रहो. अरे क्या बोलते रहे? थोड़ा सा ना अप्रिशिएशन, थोड़ा सा दिल से अप्रिशिएट करके सीख के जाइए. यहां पर यह बहुत जरूरी है. अच्छा बताइए दोस्तों, ये रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 20 नंबर मैंने कहां स्टोर किया? हार्ड डिस्क में. कहां स्टोर किया? सॉफ्टवेयर में. एक काम करना, कल मैं आपसे फिर से यही प्रश्न पूछूंगा. मेरा सत्र कितने बजे बहन जी? कल मेरे ख्याल से 11 बजे का सत्र है, मैनेजिंग चैलेंजिंग टाइम. आप जरा देखना, उस सत्र में जब आप आएंगे ना, इस रहस्य को मैं फिर से पूछूंगा. आज मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, है ना, तो आप कहेंगे स्वामी भाई इट इज आउट ऑफ सिलेबस, हमको ये सब नहीं पढ़ाया जाता है. लेकिन कल जब आप आएंगे ना, तो मैं आपको फिर से यही प्रश्न पूछूंगा, और इस रहस्य को हम लोग वैज्ञानिक स्तर पर देखेंगे कि सारी मेमोरी हम कहां स्टोर करते. लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा टेक्निक बताता हूं कि 20 नंबर मैंने कैसे याद किया. 1 मिनट का इसका अभ्यास करते हैं और कल ये सेशन को हम आगे लेकर जाएंगे. मैंने ये 20 नंबर बहुत सहज इसलिए याद कर पाया क्योंकि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी थी. और वो टेक्नोलॉजी क्या था? और वो है एकाग्रता. सारे पांडव सभी बहुत शक्तिशाली महावीर थे, लेकिन पूरे पांडवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अर्जुन को दिखाया गया. और अर्जुन महायोद्धा, बलशाली, उसकी एक विशेषता थी विच मेक्स हिम वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति. राइट, चाहे आप अस्त्र शस्त्र चला रहे, उस समय भी एकाग्रता की जरूरत है. जीवन रूपी यात्रा में भी एकाग्रता बहुत जरूरी है. और जो लोग राज्यों का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे आप में बहुत ज्यादा एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है. मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत ब्रिलियंट टीचर थी, वाणी इतनी मधुर, इसलिए वो टीचर का एक संस्कार था, बीच बीच में गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, फिर पढ़ाना आरंभ करती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. मैं टीचर का वो गीत संगीत मुझे इतना अच्छा लगता, मैं बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने गीत कितनी बार गाया. एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में 12 से ज्यादा बार गीत गाया, तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. तो मैडम ने मुझे घूर के देखा और कहा, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी. अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को बताया नहीं. एंड वी एक्सपेक्ट आर किड्स टू कॉन्सेंट्रेट. आप तो सारे डिफेंस के लोग हैं ना, अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं ना, तो हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. कोई भी कर्म करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं आपसे बहुत नम्रता पूर्वक अगर आपसे पूछूंगा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, पर्यायवाची शब्द नहीं देना, सिनोनिम्स कहते इंग्लिश में, ध्यान, फोकस, कन्वर्जेंस, एकाग्रता, इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या है एकाग्रता? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? हाँ नहीं, नयों को पूछते हैं, आपको आपको तो पता है सर। हाँ नए बताएं, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? हाँ फोकस भी पर्यायवाची शब्द है सर। आप बच्चों को ये तो फोकस करो, वो कैमरा में बराबर फोकस करता है, सेल्फी में क्या फोकस करता है टक। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस क्या कर रहे हैं उसको समझ भी नहीं आ रहा है, कैमरा को फोकस करते ना। यस सर बताइए। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको एकाग्र होना चाहिए। अब बैठिए, बहुत अच्छा है, आप वो पढ़ाई कर रहा है और हम कह रहे हैं विचार शून्य करें, पढ़ाई पे तो एकाग्रता चाहिए ना सर। तो अगर आपका ये डेफिनेशन है कि विचार शून्य होता जरूर है, लेकिन वो बच्चे को क्या समझ में आएगा सर, वो तो पढ़ाई कर रहा है ना और उसको तो एकाग्रता चाहिए। ये रिजल्ट है सर, एकाग्र जब होते हो ना कुछ समय के बाद आपके विचारों की संख्या कम होती है, वो आप मालिक बनते हो, आप जैसा करना चाहे कर सकते हो, ये उसका रिजल्ट आप बता रहे हैं और करेक्ट रिजल्ट है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि एकाग्रता क्या है? हाँ, व्यर्थ पर दूर रहना और किसी बात पर ध्यान देना। बच्चा यही पूछ रहा है, पापा ये ध्यान क्या होता है? फिर सिनोनिम पर आ गए, फिर पर्यायवाची शब्द पर आ गए। हाँ सर, लास्ट, हमारे पास उतना ही वक्त है। आप कंट्रोल द माइंड, अब वो पूछेगा कैसे कंट्रोल करूं, एकाग्रता क्या है? सारी चीज, हाँ ध्यान बोला, फोकस बोला, अभी केंद्रित होना। हाँ भाई साहब के लिए जरा तालियां बजा दीजिए, कितना अच्छा पर्यायवाची शब्द। सर आप लोग माहिर हो सर, पर्याय शब्द के लिए माहिर हो आप लोग हैं। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप कह रहे कंट्रोल योर थॉट्स, वो बोलेगा पढ़ाई कर रहा हूं कंट्रोल योर थॉट्स। एकाग्रता क्या है आज ना, क्योंकि आपको लगेगा अगले तीन दिनों में आप यहां सीखने वाले क्या हो, शुरू करते एकाग्रता से। और एक योद्धा को एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, अर्जुन को यही सिखाया गया। अर्जुन को जब सिखाया गया कि आपको क्या दिखाई देता है, हां वो तो ठीक है, वो तो रिजल्ट है, लेकिन उसका मतलब क्या है? और आज हम इस बात को सीखेंगे और आज आप एकाग्रता समझ कर जाएंगे और इसको थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आराम से बैठ जाए। पुराने जमाने में जब टेप रिकॉर्डर होता था ना, तो उसको जब हम रिकॉर्ड करते थे ना, तो दो बटन को एक साथ यूज करते थे, प्ले और रिकॉर्ड एक साथ, तो रिकॉर्डिंग होती है। उसी तरह हम सबके पास दो फैकल्टी है, ध्यान से सुनना, कल से, कल ये सुबह क्लियर होगा। एक फैकल्टी है हमारा अपना मन और दूसरा है बुद्धि। तो मन का काम है विचार करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र निर्माण करना। अब एकाग्रता क्या है आज हम ये समझकर यहां से निकलेंगे। सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे एकाग्रता का। जैसे ही मैं जो शब्द कहूंगा ना, वो ध्वनि आपके मन पर आएगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र निर्माण करेगी। और कितना समय तक आप मन बुद्धि को साथ उसको देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको एग्जाम्पल देकर अभी हम लोग एक मिनट का ये एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों अगर मैं कहता हूं सुबह सुबह का सूर्योदय, आप देख पा रहे हैं सुबह का सूर्योदय? वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? कौन सा? अच्छा, और ऑरेंज। अच्छा, और गोल्डन। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका ये जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो रंग आप बोलते हो ना, उससे स्वामी भाई को पता चल जाता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। वेरी गुड, आप लोग सब पास हो गए। वैसे भी आप लोग डिफेंस फोर्सेज हो, आपको क्या दिन क्या रात, 24 घंटे आप लगे रहते हो देश की सुरक्षा के लिए। वेरी गुड। जिसने कहा सुबह सुबह का सूर्योदय लाल होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सनराइज लाल होता है। और धीरे धीरे वो गोल्डन पे जाता है, ऑरेंजिश होता है, 6:30-7 बजे वो ऑरेंजिश होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने किसी ने येलो नहीं कहा। मुंबई में मेरे सारे बच्चे येलो कहते, सर येलो, उसका मतलब है वो 8:30 के बाद ही उठता होगा, ठीक है। तो जो ध्वनि आपके पास आती है, वो ध्वनि के वो मन पर आती है, इमीडिएटली आपका बुद्धि चित्र बनाता है। पढ़ाई में जब बच्चा पढ़ रहा है, वो देख रहा है, वो मन बुद्धि जब एक साथ टिकती है, उसका वो फोटोजेनिक कैमरा जैसे कैच करता है। ये तो हम कल आपको जरूर जरूर बताएंगे, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं, समय की मर्यादा को रखते हुए अगले 1 मिनट मैं आपको इस मन बुद्धि की यात्रा पर लेकर जाऊंगा। और अगर आप अगले 1 मिनट मेरे साथ यात्रा कर पा रहे हैं, मतलब आपकी एकाग्रता अर्जुन जैसे, यस, हाँ, अर्जुन के शायद बहुत ज्यादा समय तक होगी, लेकिन हम लोग 1 मिनट से शुरू करते हैं। और ये 1 मिनट की एक्सरसाइज में मैं चाहूंगा कि आप पास होंगे। और सुबह सुबह के सूर्योदय से हम स्टार्ट करेंगे, तो लाल रंग का सुबह का सूर्योदय देखना, और उसको मैं बोलता जाऊंगा, आप उसके साथ साथ ट्रैवल करेंगे। और 1 मिनट अगर आपका मन बुद्धि मेरे साथ यात्रा किया, वेरी गुड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। माई डियर फ्रेंड्स, बाय चांस आपका बुद्धि चलते चलते और कुछ चित्र पर चला गया, नथिंग टू वरी, वापस आप इमीडिएटली ट्रैक पर आइए, ठीक है। और धीरे धीरे हम ये एकाग्रता का जो है एक्सरसाइज में जरूर जरूर पास होंगे। आज आप सबसे मिलकर बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। कल सुबह फिर से इस यात्रा पर आप हर सत्र को जरूर अटेंड करेंगे, राजयोग आप जरूर जरूर सीखेंगे, मन को जरूर जरूर शक्तिशाली बनाएंगे, राइट। हम रेड लाइट कर दें, yes. स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने वो 20 नंबर कैसे याद किए? कल तक थोड़ा धैर्य रखिए, और कल मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने ये 20 नंबर को कहां स्टोर किया, कहां स्टोर किया मैंने। मन नहीं कहना, बुद्धि नहीं कहना, क्योंकि मन बुद्धि में स्टोर नहीं कर सकते। ये एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, मन कोई चीज नहीं है जिसमें स्टोर कर सकते। ये मन और बुद्धि समझने के लिए, राइट, दो हमारी अपनी फैकल्टी है। तो कल मैं आपसे ये फिर से प्रश्न पूछूंगा कि सारी मेमोरीज हम लोग कहां स्टोर करते हैं। इससे हमको ये भी प्रश्न का जवाब उठेगा कि आप डिफेंस फोर्स में क्यों ज्वाइन किए। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि आप डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करो, वो कहता है नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं डिफेंस फोर्सेज में, आप भी डिफेंस फोर्सेज में बनो। क्यों आपका बच्चा कहता है, राइट, कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे और कुछ बनना है, वो क्यों कहता है? इस कुछ बातों का रहस्य कल हम जरूर जरूर देखेंगे, ताकि आप अपने मन के दोस्त बनेंगे, आप अपने परिवार में एक अच्छे दोस्त बनेंगे, और धीरे धीरे में यही दोस्ती आप अपने यूनिट में भी, देश के लिए भी लेकर जाएंगे। हम 1 मिनट का एक एक्सरसाइज करेंगे, रेड लाइट कर दें। चलिए दोस्तों, आज हम एकाग्रता पर छोटा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो ध्वनि आप सुनेंगे वो आपके मन तक आएगा, और दोस्तों वो बुद्धि आपकी उसका चित्र बनाएगी। आप अगले 1 मिनट अपने मन और बुद्धि के मालिक बनते हुए साथ साथ यात्रा करेंगे। सुबह सुबह के सूर्योदय को आप देखिए, पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय। सुबह का सूर्योदय आशा का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। खुले आसमान को देखिए, और आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखिए, स्वतंत्र पंछियां। पहाड़ियों से छल छल बहता हुआ पानी, एक बहुत सुंदर नदी के स्वरूप में। नदी बहुत शांत, नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सा बगीचा। बगीचे के वो रंग बिरंगे फूलों को आप देखिए, आप उस बगीचे में बहुत प्यार से बैठे हैं।
चारों तरफ प्रकृति इतनी सुंदर और विशेष आज आपका मन एक बहुत सुंदर बगीचे की तरह, मन में खुशियां, मन में श्रेष्ठता और मन में सद्भावना। आपका मन बहुत शांत, आपकी बुद्धि दिव्य, आप मन और बुद्धि के मालिक, धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने दोनों हाथों को सामने रखी, हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करिए। ओम शांति, शुभ रात्रि, गुड नाइट।